نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Amazed by Allah's small husna آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام المولا پہ بات کریں گے ہمارے لیے یہ نام نیا نہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پچھلے کیے گئے دو نام الولی اور الوالی اس میں اور اس نام میں بہت سی مماثلت ہے کیونکہ یہ ایک ہی روٹ سے ہے تو انشاءاللہ جب ہم ان دونوں ناموں کے ساتھ آج اس نام کو بھی سنیں گے تو پھر ہمیں بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی الولی سرپرست اور مددگار کو کہتے ہیں پیچھے ہم دیکھ چکے آج بھی بہت کچھ دیکھیں گے اس پہ اور تمام اشیاء کا مالک اور نگران اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الولی یا الوالی کو پڑھتے ہیں تو اسے ایک عجیب سا تعلق محسوس ہوتا ہے اردو میں بھی یہ چیز ہمارے لیے بہت ہی عام ہے ہم اس کو ذرا سا غور و فکر کر کے دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم نے الولی اور الوالی کر لیا تو پھر ہمیں مولا یا المولا لفظ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں ایک فرق ہے باریک سا فرق ہے اس کو سمجھیے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ کا لفظ جب ولی کی صورت میں آتا ہے جس کو ہم نے کچھ دیکھا اور باقی ابھی بھی دیکھنے والے ہیں تو اس میں اور مولا یعنی المولا میں فرق ایسے ہی ہے ولی میں دوستی ہے دوستی عموماً اپنے برابر والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور دوستی میں سٹیٹس بھی برابر ہی ہوتا ہے امیروں کی امیروں سے دوستی غریبوں کی غریبوں سے دوستی اسی طرح سے ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز کے ساتھ اور اسی طرح سے ڈرائیورز کے اپنے ڈرائیورز کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کس طریقے سے اپنا ولی بنا لیا خود بھی ہمارا ولی اور ہمیں بھی اپنا ولی بنا رہا ہے بندے کی اوقات سوچیے تو صحیح کیا کہہ رہی ہوں میں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ نے اپنی دوستی ایمان والوں کے ساتھ رکھی یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی اور یقین کیجئے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کبھی اللہ کے در پہ نظریں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ زہ نصیب یہ میرا مقدر تھا نہیں نہیں یہ آپ کی عطا ہے یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے میرے ساتھ دوستی کی بات کی شرط ایک ہے کہ اگر ایمان ہوگا پھر آپ دیکھیے کہ لفظ ولی میں لیگل اتھارٹی ہوتی ہے نا گارڈین کے معنوں میں ولی کا لفظ عموماً جہاں آتا ہے وہاں یتیم کا لفظ ذہن میں آتا ہے اسی طرح نکاح کے معاملے میں عورت کے ولی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ولی فلاں یا والی فلاں دونوں ولی اور والی آلموسٹ سیم لفظ ہیں کسی ملک کا والی بسرا والی یمن آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے انچارج کے معنوں میں اسی طرح جب وراثت ہوتی ہے تو جو ورثاء ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار وارث کے ان کے لیے بھی ولی کا لفظ آتا ہے حمایتی جو آپ کو سپورٹ کرے اس کے برعکس مولا المولا سید کے معنوں میں یعنی بنیادی فرق ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام الولی آپ کے میرے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلق کو محسوس کراتا ہے کہ جب تم ایمان کے ایک اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پھر اپنی ولایت میں لے لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ بڑا خوبصورت معاملہ ہوتا ہے انسان سوچتا نہیں اس کے برعکس جب لفظ المولا آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام المولا کو جانتے ہیں تو اس میں ماسٹر سید پروٹیکٹر جیسے عربی میں چچا کے لیے بھی المولا کا لفظ آتا ہے پھر اسی طرح آزاد کروانے والا کسی غلام کو جو آزاد کراتا ہے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا نا تو پھر ابو بکر کو مولا بلال پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ فرق دونوں میں آ رہا ہے نا یعنی ایک اتھارٹی اور ایک لیول کا فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے خوبصورت طریقے سے ایمان والوں کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو برابر کی دوستیاں تو اپنی جگہ اپنے معاملے ہیں لیکن جب تم اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگاتے ہو تو تمہارا رب نہ صرف یہ کہ تمہارا دوست ہے بلکہ وہ تمہارا پروٹیکٹر بھی ہے वो तुम्हारी हिफाजत भी करता है, वो तुम्हारा मास्टर, दोस्त जो होते हैं वो मास्टर्स नहीं होते, यानी वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों को ये नहीं कह सकते कि ही ओन्ड मी, लेकिन अल्लाह ओन्ड यू। जितना ज़्यादा इन नामों को जानते ही जाएंगे, उतना आपके दिल दिमाग के ऊपर अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास बढ़ता जाएगा। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, कोई परवाह नहीं, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू। अब हम देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के इस नाम अल मौला को, ताकि आप और मैं जब भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह पे स्टक हो जाएं कि जहां हमें इंसानी सहारे टूटते हुए दिखें, जहां लोग साथ छोड़ दें। आपको लोगों के साथ की ज़रूरत थी, लोग आपको साथ छोड़कर पता नहीं किधर से किधर खो गए, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ अपने मालिक की परवाह है, मेरा मालिक, मेरा रब, मुझसे मोहब्बत करने वाला अल मौला तो मेरे साथ है। तो लफ्ज़ अल मौला को अगर आप डिक्शनरी में देखने लगें तो मौला एक ऐसा इस्म होता है जिसमें आप देखिए, नंबर एक रब, हमने लफ्ज़ और रब अलग से पढ़ा, इस लफ्ज़ मौला के अंदर ये बड़े बड़े अल अस्माउल हुस्ना भी आ रहे हैं, यानी जब आप एक एक लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से सुने तो आप इनको लिखना शुरू कर दीजिए, आप महसूस करेंगे कि इसमें अल्लाह सुबहान तआला आपके साथ अपने इस ताल्लुक़ को क्या खूबसूरत नाम देते हैं। तो मौला एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा इस्म है कि जिसमें रब, मालिक, सैयद, इनाम करने वाला, आज़ाद करने वाला, मदद करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इन सब पर आप लफ्ज़ अल मौला को बोल सकते हैं। और अल्लाह ताला इन तमाम मानों में ईमान वालों के लिए अल मौला है। मैं जब से ये नाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि हम अल्लाह ताला की इतनी सिफात और असमा को देख रहे, इतना शुरू से आगे भी देखेंगे, लेकिन मैंने अभी तक किसी एक इस्म के बारे में सिवाय अर रहीम के, कि वो कान बिल मोमिनीन रहीमा, कि अल्लाह ताला अपने रहीम होने के नाते से आखरत में मोमिनों के साथ अर रहीम होगा ना, इसके अलावा हमने कहीं ये जुमला नहीं सुना जो आज आप मेरी ज़ुबान से सुने और लिखें। अल मौला का नाम ईमान वालों के साथ खास है, यानी ईमान के बगैर कोई शख्स इस नाम के साथ न कुर्ब महसूस कर सकता है और न ताल्लुक महसूस करता है, क्योंकि कुछ खास ताल्लुक भी तो होते हैं ना, जिस तरह आप कहते हैं ना स्पेशली फॉर यू, ओनली फॉर यू, 10 लोगों को एक ही फूल भेजते हैं और कहते हैं ये फूल सिर्फ आपके लिए। अल्लाह सुबहान तआला ईमान वालों के साथ ये मामला करते हैं। और याद रखिए कि जब लफ्ज़ वली है, वाओ लाम या है, तो इसमें रब भी है, मालिक भी है, सैयद भी है, मुनिम भी है। किस तरीके से अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ ये मामलात अच्छे तरीके से करते कराते हैं, आप जब इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर आपका दिल करता है कि आप भी अपने रब के ऊपर नज़रें लगाएं। आपको फिर कोई नज़रों में आता ही नहीं है, सच्ची सी बात है, कुछ जचता नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कभी चंद बड़े लोगों में लोग उठना बैठना शुरू कर देना तो चाल ही बदल जाती है, बात का अंदाज बदल जाता है। कहते हैं लो भाई, अब छोटे मोटे लोगों को तो ये कुछ समझते नहीं, वो बड़े बड़े लोगों के घर में जाके दावते हैं और खाने पीने लग गए हैं ना, तो अब ये हमें क्या समझेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के इस नाम के साथ अपने आप को महसूस करते जाएंगे, आपको लगेगा कि अगर मैं अल्लाह की हूँ तो अल्लाह भी मेरा है। और याद रखिए कि अल्लाह सुबहान तआला की दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह सुबहान तआला की फरमा बरदारी इख्तियार करे। ये तो माँ बच्चे में भी है, प्यार तो माँ हर बच्चे से ही करती है, लेकिन जो बच्चा बात सुनता है, जो उसकी बात मानता है, फिर माँ क्या कहती है, ये है असल में मेरा बेटा, क्या बाकी बाहर से पकड़े हुए, नहीं वो भी हैं, लेकिन ये मेरी बात बड़ी मानता है। और इसी तरह से अल्लाह सुबहान तआला ने अपने नाफरमानों से अपनी दोस्ती की नफ़ी की है। जो अल्लाह सुबहान तआला पर ईमान नहीं रखते, जो इतात और फरमा बरदारी नहीं करते, अल्लाह उनका मौला नहीं है। माँ कहती है ना, जाओ भाग जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अब माँ का ये जुमला क्या है, इसको तो एक साइड पे कर दीजिए, अल्लाह ताला के लिए कोई भी निस्बत नहीं है। लेकिन बंदों को, और बंदों में भी ईमान वालों को अल्लाह सुबहान तआला की विलायत नसीब होती है, इसीलिए ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह सुबहान तआला को अपना मौला बनाए। ये टू वे है, मोहब्बत एक दिल से नहीं होती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब ताली दोनों हाथों से बजती है आवाज़ तभी आती है। अकेला रब बंदे से प्यार करे तो भी बात नहीं बनेगी, और बंदा अकेला रब से प्यार करता रहे ये हो ही नहीं सकता, ये तो वो कहते हैं दिल को दिल से राह है, देखिएगा अलवाली और अलमौला लफ्ज़ कुरान पाक की आयात में किस तरह हमारे सामने है। अलमौला कुरान पाक में तकरीबन 8 से 10 बार है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखें, कभी तो अल्लाह का नाम और कभी उसकी सिफात है। और अलवाली भी तकरीबन इतनी ही बार है कुरान पाक में, मसलन 256 अल-बकरा, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है और उनको तारीकियों से रोशनियों में निकाल कर लाता है। 256, 257, क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला दोस्त है। महसूस कीजिए इसको। आज तक आपने किसी को भी अपना दोस्त समझा, आपने अपनी सहेली किसी को समझा, किसी से आपकी बड़ी भी दोस्ती हो, ज़रा से उसको सामने लाइए और जब ये जुमला आप सुनते हैं कि अल्लाह ईमान वालियों का दोस्त है, चलिए ऐसे कर लीजिए, और फिर जब ये दोस्ती ख़ास ईमान वालियों के साथ और ईमान वालों के साथ है, तो इसका वो मुकाम क्या होगा। बड़े लोगों की बड़ी बातें, ये तो नसीब की बातें हैं, हर एक के नसीब में कहाँ ये कुछ। और सोचिए तो सही कि जिसका दोस्त अल्लाह सुबहाना ताला बन जाए, फिर उसको किसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको तकरीबन 8 मुख्तलिफ एंगल बताऊंगी आज के लेक्चर में कि जब अल्लाह किसी का दोस्त बन जाता है तो अल्लाह फिर कैसे उसके साथ मामला करता है, कैसे फिर अल्लाह ताला उसके कामों को समेट देता है, और कैसे अल्लाह ताला उसको खौफ और गम से बेनियाज कर देता है। टेंशन फ्री ज़िंदगी होने लगती है, एंग्जाइटी फ्री ज़िंदगी होने लगती है, गम का तो कोई पास खटका नहीं होगा। और फिर कैसे अल्लाह अपने बंदों को जब अपनी विलायत में ले लेता है तो उनका फ़क्र और मुहताजी दूर कर देता है। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला एक और काम करते हैं अपने वलियों के साथ कि उसे अपनों और गैरों से बेनियाज कर देते हैं, और अल्लाह अपने दोस्तों को खुद काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि अल्लाह सुबहान तआला की ये दोस्ती ईमान वालों के सिवा किसी और को नसीब नहीं होती। इसी तरह से आप सूरत मोहम्मद की आयत 11, ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, तो इस आयत से पता चला कि मौला सिर्फ ईमान वालों का होता है, काफिरों का कोई मौला नहीं होता। इसी तरह से आप देखिए माईदा 55 में, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनस्ज़ाकाता व हुम राकिऊन। तुम्हारे रफीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल, और वह अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। तो क्या पता चला कि जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, जो अल्लाह के साथ ये तीन मामले दुरुस्त कर लें, अपनी नमाजों को कायम रखने के, अपनी ज़कात को अदा करने के, और फिर रुकू करके आजजियों के साथ झुकने वाले के, अल्लाह फरमाता है मैं अपने ऐसे बंदे को कभी किसी दूसरे के बस में नहीं डालता। आगे जहाँ अहदीस आएंगी आप सुनेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर अहदीस, कि अल्लाह अपने बंदे को, जब बंदा इस्लाम की हिमायत में आ जाता है, जब अल्लाह की मर्ज़ी का बन जाता है, जब अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारियों को निभाता है, और वही बात है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसी लिए मुसलमान, मैं इसी लिए नमाजी, तो ऐसे बंदे को फिर अल्लाह ताला इस तरह काफ़ी हो जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी को इस तरीके से बना देता है कि कोई बंदा उसके बारे में सोच नहीं सकता। देखिए ये दो अलग जीने के रंग हैं, एक दुनिया, दुनिया के गम, दुनिया की तकलीफ़ें, दुनिया की परेशानियाँ, और एक ये है कि ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून। और फिर एक वक्त आता है कि बंदा भी वली बन जाता है, फिर अल्लाह उस बंदे की विलायत को इस दर्जे पे बढ़ा देता है कि चलता इस ज़मीन पे है और तस्करे उसके आसमानों पे होते हैं। और फिर वैसा बंदा बन जाता है कि ज़मीन वाले तो ज़मीन वाले, आसमानों वाले और अर्श वाले भी उससे प्यार करने लगते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ये 4 दिन की ज़िंदगी, इसके अंदर आप अल्लाह सुबहाना ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ते जाइए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। फिर आप देखेंगे कि अल्लाह सुबहाना ताला कैसे आपके साथ इस मोहब्बत का मामला फरमाते हैं जो अल्लाह ताला इन आयात में फरमाते हैं। तो करने के कामों में नमाजों को कायम कीजिए, ज़कात को अदा कीजिए, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कीजिए, मिलके रहिए, जमात की नमाजें अदा कीजिए, मुसलमानों के साथ आपके दिल जुड़े हुए हों। और इसी तरह फिर सूरत यूसुफ की आयत 101 से पता चलता है कि हज़रत यूसुफ की दुआ में से ये दुआ थी, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की वअल्लमतनी मिन तावील अहादीस फ़ातिरस्समावाति वलअर्दी अंत वलीयी फ़िद्दुनिया वलआख़िरती तवफ़नी मुस्लिमन वअल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, ज़रा यूसुफ के स्टेटस को जहन में लाइए। दुनिया की कोई ऐसी नेमत नहीं थी जो उनके पास ना हो। बिछड़े हुए माँ बाप भी मिल गए, भाई भी मिल गए, मिस्र की बादशाहत पे भी है हिस्सा, यानी दुनिया की और दीन की हर नेमत मिल गई। ख्वाबों की ताबीर भी है, नबूवत भी है। और आप दुनिया से जाते जाते क्या कहते हैं कि मालिक, तूने मुझे हुकूमत बख्शी, मुझको बातों की तह तक पहुँचना सिखाया, हिकमत। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी तावील अहादीस दे दे। हम छोटी छोटी बातों में उलझ कर अपना दिमाग खाली करते रहते हैं, हमें हिकमत ही नहीं समझ आती, और जब पानी सर से गुजर जाता फिर कहते हैं बेहतर ही था, बात मान नहीं जाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये सब दिया और कहते हैं फातिर समावाती वल अर्द, ए आसमानों ज़मीन को पैदा करने वाले, बनाने वाले, फाड़ने वाले, अंत वली जी फिर दुनिया वाल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है। क्यों नहीं किसी और मुल्क के बादशाह को कहा तुम भी बादशाह मैं भी बादशाह, मैं मिस्र का वजीर खजाना हूँ तो तुम यमन के हो गए, तो तुम रोम के हो गए, तो तुम सीरिया के हो गए। अमूमन बादशाह बादशाहों से बातें करते हैं, और ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह दुनिया की बड़ी से बड़ी बादशाहत भी ठुकरा दूँ मैं इस बात के आगे कि अंत वली जी फिर दुनिया। और ईमान कितना है कि दुनिया में तो है आखिरत में भी तू ही होगा। और याद रखिए एक ईमान का ऐसा लेवल ज़िंदगी में मिल जाता है कि फिर आपको दुनिया तो दुनिया आखिरत की भी फिक्र नहीं रहती, धड़का लगा रहता है अपने गुनाहों का, हाय कोई अचानक मामला ना हो जाए, हाय कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई अनयूजल बात ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद दिल मुतमईन मुस्कुराते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तन्हाई में अब मुस्कुराएंगे और मौत के तस्करे के साथ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना की पुकार दिल पे आती है। वल्हिकनी बिस्सालिहीन, तू मेरा खात्मा अच्छा करना और मुझे नेकों का साथ देना। तो जब अल्लाह किसी के वली बन जाते हैं तो दुनिया की बादशाहतें भी नहीं मन मोहती, फिर दुनिया के बड़े से बड़े लोगों को छोड़कर बंदा अल्लाह की दोस्तियों में आना चाहता है। और सूरत आले इमरान आयत 68, इन्ना औलन्ना सिबी इब्राहीम अललजीना तवाउहु वहाज़न्नबीय्युल्लज़ीना आमनू, इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो इन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की। यानी दावों से कुछ नहीं होता, दलील चाहिए, कॉल नहीं फेल चाहिए, किरदार के गाजी बनिए, गुफ्तार का गाजी बनना काफी नहीं। और अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, और अल्लाह वली है, अल्लाह सिर्फ इन्हीं का हामी व मददगार है जो ईमान रखते हैं। तो क्या पता चला कि ईमान के बाद बंदा अल्लाह की हिमायत में आ जाता है, सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो अल्लाह आपकी हिमायत करेगा। हम दुनिया के अंदर झूठे सहारे ढूंढते, मेरी मदद कीजिएगा, शौहर बेचारे मजलूम को बैठ के कहते हैं अच्छा जरा मेरे बारे में खानदान में बात कीजिए, अच्छा ससुराल में ये फूला, हम झूठे सहारों को ढूंढते रहते, शौहर ने साथ नहीं दिया तो रो रहे हैं धो रहे हैं। आप कहिए आप सब अपने हाल पे खुश रहिए, मैं अपने रब के साथ खुश हूँ, मेरा मालिक मेरा साथ ना छोड़े, मुझे किसी और की परवाह नहीं, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ अपने ताल्लुक को अच्छा रखना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरा रब मेरे साथ है। मेरे रब ने जब ये सब कुछ मेरे साथ किया और मैं अपने रब के साथ ये मामला पा गई, उसके बाद फिर आप कौन और मैं कौन। पूछिए अपने दिल से लोगों के लिए ये जुमले निकलते हैं या रब के लिए निकलते हैं, कैसे अपने मालिक के साथ ताल्लुक महसूस करती हूँ, कैसे तोड़ती हूँ, क्या हालात हैं मेरे अंदर के मेरे बाहर के। और याद रखिएगा जितना ज्यादा आपका दिल रब की तरफ झुकेगा रब की विलायत आपके साथ बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि जहाँ चाह नहीं वहाँ राह नहीं, आपको हमसे चाहत नहीं है, हमें आपसे चाहत नहीं। और याद रखिए कि जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कि फिर इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। कोई बहुत प्यार मोहब्बत करने वाला भी आपके बारे में एक खास हद तक तड़प सकता है, और जब वो देखता है ना कि आप में संजीदगी नहीं, आपको अपना भी नफा नुकसान नहीं, पैर वो कहता है जाओ भाड़ में। सगी माँ एक वक्त आता है बच्चे को कहती है जाओ फिर भाड़ में जाओ, अच्छा नहीं सुनते तो ना सही। वो दिल पे एक छाला पड़ जाए, वो कोयला पड़ जाए, वो एहसास वो दर्द मंदी वो सब कुछ रहे वो एक अलग बात है, लेकिन उस बंदे को फिर वो कहती है तुम जाओ अपने हाल पे खुश रहो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला इस तरीके से आपको अपना वली बनाता है और आपका वली बनता है कि फिर आप इसको दुनिया की किसी और चीज़ में देख नहीं पाते। और फिर इसके बाद सूरत अल अनाम की आयत 14, قل اغیر اللہ یتخذ ولیا، کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ کتنی حیرت ہے ایمان والے کو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے جھوٹے سہارے سامنے لاتے ہیں، اس کو مان لو، وہ بھی بڑا ہے، وہ بھی مدد کرے گا، وہ بھی دکھ بانٹتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے رب کو چھوڑ دوں، جاؤ بھاگ جاؤ، منہ سنبھال کے بات کرو، یہ سٹائل ہوتا ہے. وہ ہوا یوتم بلا یوتم، میں اس ذات کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے، تم دوسروں سے مانگتے ہو، میرا رب مجھے دیتا ہے. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں نہ شامل ہو جا. تو کیا پتہ چلا کہ جب آپ کو اللہ کی ولایت کا یقین ہو جاتا ہے، آپ کسی دوسرے پہ نظریں نہیں لگاتے، آپ کو بہت بڑا شرک لگتا ہے، چاہے وہ شرک فی المحبہ ہو، وہ شرک فی التصورف ہو، وہ شرک فی العبادہ ہو، کسی چیز میں آپ کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ نام البقرہ 286، کیا آخر میں ہم کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسن سے بات شروع ہوتی ہے، اور جو ہمارے اس موضوع سے متعلق انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی میرا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مولا کون ہے؟ رب، جو نصرت دیتا ہے. اور لفظ نصرت، بڑی خاص مدد ہوتی ہے نصرت، نصر ینصر، کوئی چھوٹی مدد نہیں ہے. تو جب آپ کو اجتماعی طور پہ امت ہونے کے ناطے یا افراد کے ناطے سے کسی دنیا کے میدان میں فتح اور کامیابی چاہیے تو اللہ مولانا. اور پھر آل عمران کی 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ان کی باتیں غلط ہیں. یہ آگے حدیث آئے گی، آپ سنیں گے کیسے غزوہ احد سے واپسی پہ ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا بل اللہ مولانا ولا مولا لکم، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. کیا پتہ چلا ساری خدائی ایک طرف، علال مولا کے ساتھ تعلق دوسری طرف. میں کسی چھوٹے موٹے سے دوستی نہیں کرتا، ہلکی پھلکی چیز مجھے پسند نہیں آتی. آپ دیکھیے جو اچھی چیزیں پہننے لگ جاتے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں پسند آتی، انسان ہے نا، نفیس ہے، سٹائل اچھا ہے اس کو، اچھا پہننا اچھا لگتا، اچھا کھانا اچھا لگتا ہے. بڑے شائستہ اور نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز پسند نہیں آتی. تو جب آپ المولا سے دوستی کر لیں، الولی آپ کا دوست بن جائے، پھر آپ کیسے ہر چیز پہ نظر ڈالیں. اور اسی طرح یہ نام المولا سورت حج کی آیت 78 میں پیچھے بڑی پیاری بات ہے، وجاہد فی اللہ حق جہادہ، لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا. ہو اجتباکم، اسی نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. لکھے اللہ جب کسی کا مولا بن جاتا ہے، جب کسی کا والی بن جاتا ہے، تو اس کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. اگر آپ سے مجھ سے اللہ نے کوئی چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا، کوئی کٹا پھٹا سا کام لے لیا ہے نا، یا لینا چاہے، تو شکر کیجیے، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بڑا اعلیٰ ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی اس کا پیچھے نصب شیخوں سے ملتا ہے، کوئی کسی شیوخ کی نسل سے ہے، وہ کوئی حفاظ کی نسل سے. ہو اجتباکم، وہ تو راہ چلتے موسیٰ کو چن لے. کیسے اللہ تعالیٰ چن چن کے صہیب رومی کو لے آتے ہیں، کبھی سلمان فارسی کو لے آتے ہیں. کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس ہدایت کو، اور کچھ کو ہدایت ڈھونڈ لیتی ہے. بہت سے لوگ جنت کو پکارتی ہے، اور کچھ لوگوں کو جنت پکارتی ہے. ہو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا. آپ میں جو بھی کہیں اللہ کے رستے میں کچھ کر رہے، بولے الحمدللہ. اللہ مرتے دم تک قائم رکھنا، قبولیت والے کام لینا، عاجزی کے ساتھ کام لینا، اور اپنی طرف سے دنیا میں فتح اور نصرت دکھانا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دین کی بہاروں کو دیکھ سکیں. اپنے بچوں کو دیکھ کر یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ان کی کامیابیاں دکھا، ہم ان کو حافظ بنتے، حفاظ کے مسلوں پہ نمازیں پڑھاتے دیکھیں، ان کو امام کعبہ بنا، ان کو عالم بنا، ان کو عامل بنا، ان کے دل دماغ ایسے تیرے آگے جھک جائیں کہ اللہ جو بھی بچہ سامنے آئے وہ آپ کا ہی ہو. کوئی ایک حافظ بن جائے، ایک عالم بن جائے، ایک دنیا میں کسی اچھے کام میں نکل گیا کوئی، اور جب لوگ مجھے سناؤ تمہاری ماں کون ہے، تو اس میں آپ کا نام ہو، یہ فلاں کا بیٹا ہے. اس طرح اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں، پھر اللہ آپ کو چنے گا. اسی کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. ف फ़नेम अल मौला, दो दफ़ा इसे कायत में अल्लाह का नाम अल मौला और मौला आया, एक तरफ मौलाकुम नकिरा और दूसरा अल मौला मारिफा। वनेम अन नसीर, तुम्हारा मौला बहुत अच्छा, वो मौला जो सबसे अच्छा मददगार है। तो जब अल्लाह किसी का मौला बनता है तो फिर उसको चुन लेता है, फिर तंगी नहीं रखता, फिर उसका नाम मुस्लिम होता, फिर कवारियस उसको हटा देता, उसके ऊपर फिर गवाहियां कायम कर देता है हक की। तो क्या पता चला कि अलवाली हो कि अलमौला हो, जब आप इस लफ्ज़ को देखते हैं ना तो फिर आपका दिल जाता है कि अल्लाह किसी ना किसी तौर पे मेरा वली भी बन जा, मेरा वाली भी बन जा और अल्लाह मेरा मौला भी बन जा। वो कहते हैं ना, फलां का वाली वारिस कौन है, अल्लाह वारिस है, अल्लाह वाली है। तो जब आप इस लफ्ज़ को मज़ीद थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो देखिएगा ज़रा कुछ लफ्ज़ और नोट कीजिए जो पहले बोले थे, उसमें से इनको एग्जाम कर दीजिए, तो फिर आपको समझ आएगा कि वली के लफ्ज़ के अंदर रब, मालिक, सईद, मुनिम इनाम करने वाला, मोतिक, मोतिक कौन होता है, आज़ाद करने वाला, अतीक कहते हैं आज़ाद किए हुए को, उतका जहन्नमियों के बारे में आता है, जब बिलाखिर उनको सिफारिश के साथ आज़ाद कर दिया जाएगा तो उनके माथे पे लिखा होगा उतकुर रहमान। फिर इसी तरह नासिर, महिब, करीब। तो विलायत की असल कुर्ब है वो कुर्ब जो रिश्तेदारी की बिना पे हो या दोस्ती की बिना पर हो। वो कुर्ब ज़मानी भी हो सकता है, और यानी कुर्बे ज़ुबानी और कुर्बे मकानी, यानी ये कुछ इस किस्म का कुर्ब होता है कि जिसके अंदर कभी कभी हम मकान एक साथ रहने से होता है, कभी एक ज़ुबान बोलने से ये कुर्ब होता है। और याद रखिए कि ताल्लुक़ और रिश्ता नसब का हो या दीन का, सदाकत पे हो या फिर ये ताल्लुक़ दयानत पे हो, ये ताल्लुक़ मज़हब के बिना पे हो या इंसानियत के बिना पे हो, ये सब औसाफ़ विलायत के हैं। यानी किसी न किसी तरह से विलायत कायम हो जाती है और इन पे पूरा उतरने वाला वली है या मवाली है। चंद मिसालें लीजिए, फिर आप इससे समझेंगे कि वली का लफ्ज़ कैसे आपके मेरे इस छोटे से जहन में समा सकता है। किसी भी बच्चे को जब मदरसे में दाखिल किया जाता है तो उसके वली के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। अगर किसी यतीम बच्चे का कोई सरपरस्त या वली ना हो तो वो दुनिया में ख़ुद को बेबस और बेयारो मददगार पाएगा, इसका दिल टूट जाएगा। तो वलीउल अमर का होना इंसान को एतमाद बख्शता है ना। तो आप कह सकते हैं कि जब वलीउल अमर, अमर कहते हैं काम को, यानी किसी भी काम के मामले में कोई आपकी टेक केयरर, आई विल टेक केयर, आपके हस्बैंड कहते हैं डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ, ओके, ट्रेवलिंग के दौरान आई विल टेक केयर ऑफ पेपर्स, इट्स ओके, आप कितने रिलैक्स हो जाते हैं। माँ कहती है लाओ मैं तुम्हारे बच्चे की टेक केयर करती हूँ, आप आज़ाद हैं। तो याद रखिए कि वलीउल अमर का होना जिंदगी के नशेबो फराज में एक मोहब्बत भरा सहारा है। वो बाप हो सकता है या चचा, और अगर वो दोनों ना हो तो दादा उसका वली है, अगर ये सब ना हो तो फिर काजी वली मुकर्रर हो जाएगा। यानी जिंदगी का गुजरना मुश्किल है वलीउल अमर के बगैर। तो जब दुनिया की जिंदगी में किसी को वलीउल अमर बनाना लाजमी है, आसानियां होंगी तो फिर लिखिए, वली ऐसी मोहब्बत करने वाला होता है जो दुश्मन के मुकाबले में अपने दोस्त की मदद करता है, दुश्मन के मुकाबले में अपने दोस्त की मदद करता है, और दोनों फिर एक दूसरे के वली होते हैं। ये एक तरफ नहीं होती, जैसे आप कहते हैं ना हम दोस्त हैं तो मैं आपकी दोस्त, आप मेरी दोस्त, और जब कभी किसी मुश्किल का सामना पड़े तो वो बिला झिझक फिर दोस्त का दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाजे को खुला पाता है और हर तरह से फिर इसकी मदद, सरपरस्ती, हिमायत और नुसरत करे। इसे अकेला और बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। और याद रखिए, दोस्त या वली शुरू से आखिर तक इसके मामलात की निगरानी और निगेबानी करता है। जब दो इंसान एक दूसरे के दोस्त हों तो दोनों एक दूसरे के बराबर रुतबे और हैसियत के वली होते हैं, राइट। जब अल्लाह अल वली आ जाए तो उसकी तो मसलुल आला है, लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल अलीम। बंदा अपने मुकाम बंदगी पे रहता है और दोस्ती का हक अदा करता है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी शान के मुताबिक अपने बंदे के लिए विलायत के कमालात दिखाता है, और बंदा जवाबन अपने वली यानी अपने रब अज़्ज़ा वजल से शुक्रगुजारी और फरमा बरदारी का मामला करने वाला होता है। देखिए, अल्लाह के साथ बराबरी का तो तसव्वुर भी नहीं है ना। गुलाम और आका में यही तो फ़र्क है। गुलाम पूरी दयानतदारी से गुलामी करे और आका पूरी इनायात निछावर कर दे, ऐसे ही है ना। आप और मैं बने या का नाबुदू, अच्छी बंदी बन जाए तो आप अल्लाह की वलायत में कैसे आ गई एक गुलाम होने के नाते। फिर अल्लाह भी आपके ऊपर जो निछावर करेगा वो आप संभाल नहीं सकेंगे। और फिर वो वक्त आता है, याद कीजिए कि बंदा मांगता थोड़ा है, रब देता ज़्यादा है। हमारे हाथ छोटे, उसकी अता बड़ी। और जब आका अपनी अनायात निछावर करे तो क्या हालात हैं।